जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला अध्याय चार श्लोक संख्या 29 बोलिए। मो बिसाए गोपी गणेर उपपति भावे योग माया करीबे के अपन है प्रभावी। मो बिसाए गोपी गणेर उपपति भावे योग माया करीबे के अपन है प्रभावी। अनुवाद बोलिए। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। योग माया उस अंतरंगा शक्ति का नाम है जो भगवान को आत्मविस्मृत बनाती है। अभी यहीं पर मैं रोकता हूं। प्रभुपाद जी योग माया की परिभाषा क्या बता रहे हैं? योग माया वो अंतरंगा शक्ति है जो क्या करती है भगवान को?
आत्मा को भुलाने वाली।
आत्मविस्मृत भगवान को ही भुला देती है। भगवान ही भूल जाते हैं। हाँ ये सही बात है। भगवान ने भागवत के 9वें स्कंध में भी कहा है मदन्यते न जानन्ति न अहं तेभ्यो मनागभि। वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। कोई भक्त सोचता है कि भगवान मेरे हैं तो भगवान भी उसको सोचते हैं कि ये मेरा है बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ना भक्त किसी को जानता है और ना भगवान किसी को जानते हैं। भक्त भगवान को जानता है, भगवान भक्त को जानते हैं। योग माया की ये परिभाषा प्रभुपाद बताते हैं। और जो उनके शुद्ध भक्त के लिए विभिन्न रसों में प्रेम व्यापार बनती है। तो दो परिभाषाएं योग माया की। एक तो भगवान के साथ योग माया की परिभाषा क्या है? भगवान को भुला देती है कि वे ईश्वर हैं। और भक्त के साथ में विभिन्न रसों में प्रेम व्यापार करती है। विभिन्न रस, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, और 7 गौण रस हैं। हास्य रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, और रौद्र रस, भयानक रस, है ना, वीर रस। हाँ वो बता दिया, रौद्र रस और बीभत्स रस, ये सब बता दी। 7 गौण रस और 5 मुख्य रस है। योग माया का ये कार्य है। करुण रस, धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है 12 प्रकार के रस हैं। तो योग माया जो है भक्त को विभिन्न रसों में प्रेम व्यापार कराती है भगवान के साथ में। यही योग माया शक्ति ब्रज की गोपियों के मनों में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करती है जिससे वे कृष्ण को अपना उपपति समझती हैं। प्रभुपाद जी की भाषा बड़ी सुंदर है जिससे कि हमारा जो भाव है वो दूषित ना हो। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि योग माया शक्ति ही ब्रज की गोपियों के मनों में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करती है जिससे वे कृष्ण को अपना उपपति समझती हैं। उपपति का तो मतलब इस भौतिक दृष्टि में उपपति ये बड़ा दूषित शब्द है। उपपति का मतलब क्या है? कोई स्त्री विवाहिता है और दूसरे को जो है ना वो अपना पति समझे, दूसरे व्यक्ति को, है ना, तो वो तो गलत है। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं गोपियों के मन में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करती है। ये आध्यात्मिक भाव है गोपियों का, दूषित भाव नहीं है। आध्यात्मिक भाव पवित्र भाव है। क्या? कि कृष्ण को अपना उपपति समझती है। परकीय रस में, मतलब वो भयभीत होती हैं कृष्ण से मिलने में, कृष्ण से बात करने में भयभीत होती हैं, संसार की नजरों में जो है उन्हें भय है कृष्ण से कैसे बात करें, लेकिन ये पवित्र और आध्यात्मिक भाव है। तो ये योग माया का कार्य है। वैसे गोपियां भगवान की ही पत्नियां हैं, लेकिन तो भी वो योग माया सा उनमें भाव पैदा करती है कि भगवान जैसे पराये पति हैं, और इस प्रकार से उनका जो है जो प्रेम है और तीव्र होता है, मिलने की उत्कंठा और तीव्र होती है, डर भी रहता है और मिल नहीं पाती है, मिलने की इच्छा जो है ना और ज्यादा तीव्र होती है। तो योग माया का कार्य है ये। इस भाव की तुलना संसारी अवैध यौन प्रेम यानी काम वासना से नहीं की जा सकती। इसलिए प्रभुपाद जी कितना हमें सचेत कर रहे हैं कि इधर जरा भी हमारे कदम ना बढ़े सीधे, आप सीधे आगे बढ़ो कृष्ण भावनामृत की ओर, कदम इधर उधर ना जाए। इसलिए प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि तुलना नहीं हो सकती है, इसका यौन मनोविज्ञान से कोई वास्ता नहीं होता। यौन मनोविज्ञान मतलब शारीरिक संबंध से वास्ता नहीं है। ये जो ना प्रेम का भाव है जो कि शुद्ध प्रेम का भाव है, यद्यपि ऐसे भक्तों का शुद्ध प्रेम यौन व्यापार प्रतीत होता है, काम वासना जैसी प्रतीत होती है ना। तो कोई स्त्री है वो किसी पराये पुरुष से संबंध रखती है, या कोई अविवाहिता लड़की है वो किसी पराये पुरुष से संबंध रखती है, इसके बाद फिर वो कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं, गर्भपात करते हैं, ये चीज है ही नहीं कृष्ण के साथ। आगे ये स्मरण रखना होगा, प्रभुपाद लिखते हैं कि इस विराट जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका असली प्रति अंश आध्यात्मिक जगत में पाया ना जाता हो। अंग्रेजी में क्या है प्रति अंश, काउंटर पार्ट, प्रति अंश, काउंटर पार्ट। हाँ हाँ, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये स्मरण रखना होगा कि इस विराट जगत में, विराट जगत मतलब भौतिक जगत में, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका असली प्रति अंश आध्यात्मिक जगत में पाया ना जाता हो। इसका मतलब उसका शुद्ध रूप में, जो शुद्ध रूप में जो उसका जो है, उसका जो शुद्ध रूप है यह आध्यात्मिक जगत में है। ये बड़ा अशुद्ध संबंध है किसी स्त्री का अपने पति के अलावा किसी पुरुष से संबंध हो, बहुत अशुद्ध है। लेकिन यही सबसे ज्यादा शुद्ध है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ। सारा भौतिक जगत ब्रह्म से उद्भूत है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में भगवान का निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष ब्रह्म, निर्दोष ब्रह्म में दोष नहीं है, और ब्रह्म से उत्पन्न है अगर जगत तो। इसलिए वासनात्मक दंपति प्रेम असली आत्मा का विकृत प्रतिबिंब होता है। ये जो वासना है, काम वासना है स्त्री पुरुष के बीच में इस भौतिक संसार में, ये वास्तव में विकृत प्रतिबिंब है, विकृत छाया है किसकी, आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम संबंध है। किंतु इसे तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक अध्यात्म ज्ञान की पर्याप्त शिक्षा प्राप्त ना हो। अध्यात्म ज्ञान की पर्याप्त शिक्षा, इसलिए भगवद गीता पूरी हमें समझना है, श्रीमद भागवत के 9 स्कंद पूरी तरह समझना है अध्यात्म ज्ञान, तब 10वें स्कंद में आते हैं, फिर कहीं रास लीला आती है। अब प्रभुपाद जी का एक प्रवचन हुआ था किसी शुक्रवार के दिन, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 30 अध्याय के 13वें श्लोक पर, तो उसमें धीर की जो है प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, तो कृष्ण के बारे में बताते हैं कृष्ण जो है ना कैसे धीर हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कृष्ण को जो है राजसूय सभा का सभापति चुना गया, पता है सभापति चुना गया मतलब अग्र पूजा, सबसे पहले कृष्ण की पूजा हो इसके लिए कृष्ण को चुना गया, महाराज युधिष्ठिर का वो राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो किसी व्यक्ति ने जो है ना आक्षेप किया कि ये आदमी क्योंकि वे लोग अंधे थे, वे लोग कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। तो ये तो स्त्रियों से संबंध रखता है शुरू से ही, किसी ने आक्षेप किया। तो आप जानते हैं कौन था, एक ही व्यक्ति था, शिशुपाल था। तो कैसे इसको सभापति बनाया जा सकता है? तो उस समय भीष्म जो सबसे निश्चित ब्रह्मचारी थे, भीष्म जी जो सबसे निश्चित ब्रह्मचारी थे, तो हाँ उन्होंने कभी भी पत्नी स्वीकार नहीं की और किसी स्त्री से संबंध नहीं रखा भीष्म ने। वे तुरंत खड़े हो गए, किसके पक्ष में? कृष्ण के पक्ष में खड़े हो गए और बोले कि मैं जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा हूं, परंतु अगर मैं कृष्ण के स्थान पर होता कि जवान लड़कियों के साथ में नृत्य करता तो तो अगर मैं उनके कृष्ण के स्थान पर होता तो मैं गिर गया होता। लेकिन ये कृष्ण जो है ना, जवान लड़कियों के साथ में नृत्य करते थे और ये व्यथित नहीं हुए, मैं व्यथित हो जाता, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए ये धीर हैं, इनको ही सभापति बनना चाहिए। अभी ठीक है, सुनाई पड़ रहा है सबको? अच्छा नहीं, यहां पर नहीं सुनाई पड़ रहा, पीछे सुनाई पड़ रहा है सबको। तो आप देखेंगे रासलीला कृष्ण जो है ना, बहुत सी जवान लड़कियों के साथ नृत्य करते थे, परंतु आप नहीं देखेंगे कि कोई उनमें यौन संबंध था। इसमें किसी इस प्रकार की कोई चीज ही नहीं है। तो ये धीर है, वे भक्त थी गोपियां और वे आती थी कृष्ण के पास, परंतु किसी प्रकार की ऐसी चीज नहीं लिखी है कि गर्भ हुआ हो या गर्भपात किया गया हो, गोपियों ने गर्भ धारण किया हो या गोपियों का गर्भपात कराया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। नहीं, ऐसी कुछ चीज नहीं है। तो इसको कहते हैं धीर। जिस समय विचलित होने का जब अवसर होता है, उस समय भी गोपियां कृष्ण के पास आती हैं, क्योंकि वे बहुत सुंदर जवान पुरुष थे, वास्तव में वे उनके सौंदर्य से आकर्षित थी। तो इसको कहते हैं कामा, वे आती थी काम भाव से, परंतु जब आती थी वो कृष्ण के पास तो वे शुद्ध हो जाती थी। इसे कहते हैं धीर। कृष्ण इतने दयालु थे, गोपियां जो कृष्ण को चाहती थी, उनका संग करना चाहती थी, तो कृष्ण उनके उन्हें अवसर दिया, हाँ आओ। गोपियां चाहती थी कृष्ण को पति के रूप में, उन्होंने तपस्या की कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, परंतु उस समय कृष्ण गोपी और कृष्ण समान अवस्था के थे, जैसे लड़के और लड़कियां एक साथ खेलते हैं, परंतु लड़कियां 12 साल की अवस्था में, 13 साल की अवस्था में उनकी जो यौन इच्छा है वो प्रबल हो जाती है, परंतु लड़के लड़कों में यौन इच्छा प्रबल नहीं होती है जब तक कि उनको गलत संगति ना मिले। तो ना तो यह संभव था कि कृष्ण इतनी लड़कियों के साथ विवाह करते, परंतु वे चाहती थी कृष्ण को पति रूप में सबके सब, इसलिए कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की वस्त्र हरण के रूप में। क्योंकि कोई स्त्री है वो अपने पति के सामने ही केवल नग्न हो सकती है, ये वैदिक पद्धति है। तो कृष्ण किसी प्रकार से उनको वो नग्न करते हैं और घोषित करते हैं कि तुम चाहती थी मुझे अपने पति के रूप में, इतना बस। लोग कृष्ण को गलत समझते हैं, तो जब तक समझा ना जाए प्रामाणिक अधिकारियों के द्वारा, कृष्ण को हमेशा लोग गलत समझते हैं। परंतु वो धीर हैं, वो अधीर नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति के समान नहीं है, धीर। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा ये बताए हैं, ये बातें जो है लोगों को बताने लायक हैं। तो इस प्यार की जो है हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के अवतार के आंतरिक कारण, आंतरिक कारण है ना। तो कृष्णदास कविराज पहले तो चर्चा करते हैं कृष्ण, कृष्ण का जो अवतार हुआ वो क्यों हुआ। तो कृष्ण जो है ना, अनेक प्रकार की जो स्त्रियां हैं तो वो कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो भगवान कृष्ण अवतार लेने की इच्छा कर रहे हैं कि उन सबकी वो इच्छा पूरी करें। अब हम देखेंगे कई प्रकार के जो है गोपियां हैं, कई प्रकार की गोपियों के युद्ध थे जब भगवान कृष्ण ने लीला करी है, तो और कृष्ण उनका कितना पवित्र संबंध है कृष्ण के साथ। कृष्ण पवित्र हैं और गोपियां पवित्र हैं, उनके बीच में संबंध बहुत पवित्र है। तो इसकी चर्चा जो है हम करेंगे कई प्रकार की गोपियों के बारे में बता करके। तो ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, एक तो श्रुति रूपा गोपियां हैं। श्रुति रूपा गोपियां मतलब जो वेदों की ऋचाएं हैं, तो वे भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो श्रुति रूपा गोपियों ने पहले के वरदान के अनुसार ब्रज में प्रकट हुई, तो कृष्णचंद्र का जो है साहचर्य प्राप्त किया उन्होंने। तो नारद जी बताते हैं राजा बहुलाश से कि श्रुति रूपा जो गोपियां थीं, वे शेष साई भगवान विष्णु के वरदान से ब्रजवासी गोपों के कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदा देवी की आराधना की। तो अलग अलग गोपियों के जो यूथ हैं वो अलग अलग प्रकार की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। तो ये श्रुति रूपा गोपियां हैं, इन्होंने क्या किया, वृंदा देवी की आराधना की, जो वृंदावन की ईश्वरी हैं, वृंदा भूमि, वृंदा भूमि। वृंदा के दिए वरदान से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए आने लगे। अब भगवान रोज उनके पास जाते हैं उनके घर में रास के लिए। एक दिन रात में दो पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। रात के दो पहर तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़े। उस समय गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्तिभाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा, हे श्री कृष्ण, हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं, तब आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए, पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे प्रियाओ, जो जिसके हृदय में बास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। आज मेरे साक्षात गुरु दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, भगवान कहते हैं, सुन रहे हो, तो आप आंखें क्यों बनती है, आंखें खोलिए। तो भगवान कहते हैं, मेरे साक्षात गुरु दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, उनकी सेवा के लिए मैं चला गया था। तो ये जो इसलिए मुझे देरी हुई है। तो गोपांगनाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहते हैं कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर हैं, तो आपके भी गुरु हैं, आपके भी गुरु दुर्वासा मुनि, ये जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। तो आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बीच में विशाल नदी यमुना है, हम कैसे पार करेंगे, इसलिए बिना किसी नाव के यमुना जी को पार हम कैसे कर पाएंगे। तो भगवान बोले, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए कहना, ध्यान से सुनिए कृष्ण क्या कहते हैं, कहना यमुना जी से, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हों तो हे यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यदि कृष्ण बाल यति सर्व दोष है विवर्जित तरही नो दे मार्गम कालिंदे सरितांबरे। तो कृष्ण ने कहा गोपियों से कि ऐसा कहना, ये बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी, उस मार्ग से तुम सभी सुखपूर्वक चले जाना। तो उनका ये वचन सुनकर के गोपियां विशाल पात्रों में 56 प्रकार के भोग लेकर यमुना के तट पर गई और सिर झुका करके उन्होंने श्री कृष्ण की बात दोहरा दी। सिर झुका करके श्री कृष्ण की बात दोहरा दी। उनको विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन सिर झुका करके दोहरा दिया कि यमुना पार जाना है, इसलिए कृष्ण की बात दोहरा दी। लेकिन हुआ क्या, उसका प्रभाव यमुना जी ने मार्ग दे दिया और बड़ी विस्मित हुई गोपियां कि रास्ता कैसे मिल गया, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब भांडीरवट के पास जाकर के दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और बहुत सी भोजन सामग्री उनके आगे रखी। अब सब कहने लगी पहले मेरा भोजन ग्रहण करो, पहले मेरा भोजन ग्रहण करो। अब आपस में झगड़ा होने लगा, यहां झगड़ा हो रहा है, आप लोग सो रहे हो? नहीं, लेकिन आपकी आंखें बंद है ना, इसलिए हमारी हमारी रुचि तब बढ़ेगी जब आप हम देखेंगे रुचि। तो इस प्रकार विवाद कर रही हैं तो मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने ये कहा कि मैं कृतकृत्य परमहंस और निष्क्रिय हूं, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने हाथों से मुंह में मेरे मुंह में डालो, मैं नहीं खाता। अजगर वृत्ति होती ना, अजगर के मुंह में जा जाए जो तो अपना खा लेता है, वो खाता नहीं। तो बोले कि मैं तो खाता नहीं हूं, परमहंस हूं, तो मेरे मुंह में डाल दो। दुर्वासा मुनि ने यूं कहकर उन्होंने अपना मुंह फैलाया और सब गोपियों ने बड़े हर्ष के साथ अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ डालना आरंभ किया। और मुनीश्वर दुर्वासा भूख से पीड़ित थे तो करोड़ों भार से कम नहीं थे वो, और सब खा गए जितना भोजन था। अब गोपियां चकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी, बड़ी चकित हो गई, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। फिर सब बर्तन उनके खाली हो गए और मुनि को विस्मित गोपियों ने प्रणाम किया और कहा कि हे मुने, यहां आने से पहले श्री कृष्ण की कही बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन करने के लिए आई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगे, ये हमारे मन में बड़ा संदेह है। तो दुर्वासा बोले कि तुम यमुना जी के जब किनारे पहुंचो तो इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि केवल दूबा का रस पीते रहते हैं, कभी अन्न नहीं खाते ना जल पीते हैं, तो ये यमुना जी हमें मार्ग दे दो। यदि दुर्वासम पीत्वा दुर्वासा केवलम छितौं व्रति नरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले, तो यमुना जी तुमको मार्ग दे देंगे। तो फिर गोपियां उन मुनि को प्रणाम करके यमुना जी के तट पर आई। अब उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, झूठ बुलवा रहे हमसे, कृष्ण ने भी झूठ बुलवाया और दुर्वासा मुनि भी झूठ बुलवा रहे हैं, लेकिन रास्ता पाना है तो बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा कहा उन्होंने तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ उनको। यमुना जी को पार कर गई। फिर अगले रात में जब कृष्ण से मिली तो उन्होंने पूछा कि जैसे गुरु असत्यवादी हैं उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं। गुरु चेले दोनों झूठ बोलने वाले हैं। आप तो गोपियों के उपपति हो, बचपन से रसिक हो, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, ये स्पष्ट बताओ हमें। और हमारे सामने बहुत सा अन्न, करोड़ों भार, 56 भोग खाने वाले दुर्वासा मुनि केवल दूबा का रस पीने वाले कैसे हुए। तो ये हमारे मन में बड़ा भारी संदेह हुआ है। तो भगवान फिर बोलते हैं कि मैं ममता अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट और प्राकृत गुणों से रहित हूं, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार समाना सर्वगह परहां सदा वैसम रहितो निर्गुणो हम न संशयहं। तथापि जो भक्त जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूं। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। फिर भगवान गीता के श्लोक भी सुनाते हैं, जिस पुरुष के सभी समारंभ कामना और संकल्प से शून्य रहते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। गीता का श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुधाम। योग्युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त अज्ञानियों में भेद बुद्धि उत्पन्न ना करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन कराए। ये भी गीता का श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने बस में कर रखा है और जो समस्त संग्रह परग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्बिस को प्राप्त नहीं होता। गीता का श्लोक, निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिसम। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समय अनुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अहम् लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम यमाम भसाम। तो इस तरह से कृष्ण जो है कितने पवित्र हैं, ये भी जो घटना हमने सुनाई और गोपियों का संदेह भी कैसे दूर हुआ। तो ये श्रुति रूपा गोपियां थीं। अब सुनिए ऋषि रूपा गोपियों के बारे में। ऋषि रूपा गोपियां ये कौन है? दंडकारण्य के ऋषि। इनकी कथा सुनो, वह सब पापों को हरने वाली परम पावन और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। गोपी नाम ऋषि रूपाणाम आख्यानम श्रृणु मैथिल सर्व पाप हरम पुण्यम कृष्ण भक्ति विवर्धनम। तो कथा कुछ और भी मैं छोड़ रहा हूं, तो समय कम है। तो नंदराज के घर में जाकर ये कन्याएं जो है गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। कौन?
ये जो ऋषि 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 गोपियां जो ऋषि,
हाँ, दंडकारण्य जो ऋषि थे, नंद महाराज के घर में रत्नों के जो है भूषणों से विभूषित कन्याएं थी। नंद महाराज इतने धनी थे कि जो गोबर उठाने वाली कन्याएं हैं वो रत्नों से विभूषित हैं। तो गोबर उठाने का काम करने लगी। देखो ऋषि मुनि ने इतनी तपस्या करी किस लिए? नंद महाराज के घर का गोबर उठाने के लिए इतनी तपस्या करी, सोचो। गोबर उठाने का काम करने लगी। तानंद राजस्य गृहे कन्निका रत्न भूषिता गवाम गोमय हारण्यों बभोवर गो ब्रजे सूचान। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगे। अब देखा इन्होंने कौन सा व्रत किया। जो श्रुति रूपा गोपियां हैं उन्होंने वृंदा देवी की आराधना की और ऋषि रूपा गोपियां इन्होंने यमुना जी की आराधना की। श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा कन्या जाति स्मराश्चताम कालिंदी सेवनम चक्र नित्यम श्री कृष्ण हेतवे। एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उनको दर्शन दे करके वर देने के लिए तैयार हुई। अथ गदा श्यामलांगी कालिंदी दीर्घ लोचना ताभ्या सुदर्शनम दत्वा वरम दातुम समुद्यता। तब उन गोप कन्याओं ने ये वर मांगा, ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हो तत्थास्तु कहकर यमुना जी वहीं अंतर्धान हो गईं। तावब्रिरे ब्रजेजस्य पुत्रो भूयात् पतिश्चनः तथास्तु चोक्त्वा कालिंदी तत्प्रेमान्तरधीयते। तब वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिकी पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र विहार किया करते हैं। ता प्राप्ता वृंदकारण्ये कार्तिक्याम रास मंडले ताभि सार्धम हरि रे मे सुरी भी सुर राणिवे। अब मिथिला पूर्वासिनी गोपियां, ये दूसरी हैं जो भगवान राम के समय सीता जी की जो मिथिला नगरी है वहां की स्त्रियां थीं। तो इन्होंने जो है इन्होंने जो है मार्ग शीर्ष में कात्यायनी का व्रत किया। ये जो मिथिला पूर्वासिनी गोपियां हैं इन्होंने क्या किया, कात्यायनी का व्रत किया। मार्ग शीर्ष महीने में जो निकल चुका है कात्यायनी का व्रत किया। तो ये हम लोग सुन चुके हैं ये कथा, ये मिथिला पूर्वासिनी गोपियां की कथा है। फिर कौशलपुरवासिनी गोपियां हैं, कौशलपुरवासिनी कौशलपुर रास्ते में कौशलपुर मिला। मिथिला से जब आए भगवान राम अयोध्या में तो रास्ते में कौशलपुर मिला तो वहां की स्त्रियां थी। इनका वर्णन सुनो, ये श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला और पुण्य जनक है। कौशलानाम गोपिकानाम वर्णनम श्रृणु मैथिल सर्व पाप हरम पुण्यम श्री कृष्ण चरितामृतम। ये जो कौशल पुरवासिनी स्त्रियां हैं राम के वरदान से ब्रज में नौ उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और इनका विवाह हुआ था दूसरे गोपों के साथ में और इन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सर्वतोधिकम चक्रुः कृष्ण नंद सुते कमनीय महात्मनी। अब कैसे करती हैं ये, क्या करती हैं, ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीतांबर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हंसी परिहास किया करते थे। ताभि सार्धम सदा हास्यम ब्रज वीथि सुमाधव स्मृत पीत पटादाने कर सुने सचकार। वे गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो ये कहना भूल करके कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। दधि विक्रियार्थम याम त्यस्ता कृष्ण कृष्णेति चा ब्रुवन कृष्ण ही प्रेम संसक्ता भ्रमन्त्यः कुंज मंडले। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र संपूर्ण दिशा और वृक्ष और जन समुदाय में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। देखो कितनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की। खेवायो चाग्नि जलयोर मह्याम ज्योतिर्दिशा सुचाम द्रुमे सुजन वृंदे सुतासाम कृष्णो ही लक्षते। प्रेम के समस्त लक्षण उन्हें प्रकट थे, श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। ये सारी ब्रजांगनाएं आठों सात्विक भावों से संपन्न थीं। प्रेम लक्षण संयुक्ताम श्री कृष्ण हृदय मानसाम अष्टभि सात्विकैर भावैन संपन्नास्तास्य योषिताम। प्रेम ने उन सबको परम हंसों की अवस्था को पहुंचा दिया था। वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही निमग्न होकर ब्रज की गलियों में विचरा करती थीं। प्रेमणा परमहंसानां पदवीं समुपागता कृष्णानंदा प्रधावन्त्यो ब्रजवीथिषु तान् नृपैन। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया, वे उन्मत्त पिशाचों की भांति कभी मौन रहती हैं कभी बहुत बोलने लगती हैं और लज्जा चिंता को छोड़ दिया उन्होंने। जना जनम न जानन्त्यो जड़ोन्मत्त पिशाचवन अब्रवंत्यो ब्रवंत्यो वा गत लज्जा गते व्यथा। इस प्रकार कृतार्थता को प्राप्त होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखार बिंद को चूम लेती थी। हे राजन उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय और इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म वासुदेव से अविचल प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाह रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने बस में कर चुकी थी उनकी तपस्या का अपने हजार मुखों से वर्णन करने में भी शेष जी समर्थ नहीं है। शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते हजार मुखों से इनकी तपस्या। तासाम तपः किम कथयामि, तासाम तपः किम कथयामि राजन, पूर्णे परे ब्रह्मणि वासुदेवे, याश्चक्रे प्रेम हृदिन्द्रियाद्रेर विसृज लोक व्यवहारे मार्गम, या रासरंगे विनिधाय बाहुम, कृष्णांशयो प्रेम विभिन्न चित्तां, चक्रुर्वशे कृष्णबलं तपस्तन् वक्तुं न शक्तो वदने फणीन्द्रः। आदिदेव, आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही बस में होते हैं, निश्चय इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण हैं। गोपियां सबसे बड़ी अधिकारी हैं प्रेम भक्ति की। उन्होंने कभी सांख और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई। भक्त वश्या हरि रादिदेवहां, सदा प्रमाणम किले चात्र गोप्याहां, सांख्यम च योगम न कृतम कदापि, प्रेम ने यस्य प्रकृतिं गता स्युः। अब और गोपियां हैं अयोध्यावासिनी, अयोध्यावासिनी गोपियां, इनका वर्णन सुनो। इनका वर्णन है मिथिलापुरवासिनी, कौशलपुरवासिनी, अब अयोध्यावासिनी, अब अयोध्यावासिनी गोपियां हैं ये। कौशलपुर रास्ते में पड़ता है, कौशलपुर से कौशल्या, राम की माता कौशल्या जो है ना कौशलपुर की थी ना। तो अयोध्यावासिनी गोपियों का वर्णन श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। अयोध्यावासिनी नाम तुम गोपी नाम वर्णनम शृणु, चतुष्पदार्थम साक्षात कृष्ण प्राप्ति करम परम। तो कथा तो इसमें काफी लंबी है। ये राजा विमल की कन्याएं बनी, और फिर इनका जो है ना कृष्ण के साथ में विवाह हुआ, ये विवाहिता थी कृष्ण के साथ में।
इनको उन्होंने किसने चुरा लिया, बंदी बना लिया था, वही है?
नहीं, ये जो है बिल्कुल अलग ही कथा है, कोई जानता नहीं इस रहस्य को, और ना उस समय कोई जान पाया इस रहस्य को। फिर कृष्ण आकाश मार्ग से गए, और चंपक पुरी के राजा जो थे विमल, तो उनकी कन्याओं से उन्होंने विवाह किया, और फिर जो है ना आकाश मार्ग से विमान में बैठा करके ले आए, और काम वन में उनके जो है ना 900,000 महल तैयार कराए, और ये जो है इनके सुंदर महल थे काम वन में।
काम वन में विमल कुंड है ना,
विमल कुंड है वहाँ। धन्यवाद। तो ये उनके ही जो है जो नेत्रों से आनंद के जल बिंदु गिरे, उसी से विमल कुंड नामक तीर्थ उत्पन्न हुआ। ये जो है कृष्ण प्रियाएं वहां काम वन में रहती थीं, और भगवान के साथ गेंद खेलती थीं, और जितनी संख्या में ये कृष्ण प्रियाएं थीं उतने रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। यावती चा प्रिया मुख्यां तावत रूप धरो हरि, राजरासे ब्रजराड जनयन तन्मना प्रभु, रासे विमल पुत्रीणाम आनंद जल बिंदु भी, चुतैर विमल कुंडो भू तीर्थानाम तीर्थमुत्तमम। वो विमल कुंड जो है उसका दर्शन करके, उसका जल पी करके, उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता है, और गोलोक धाम में जाता है। दृष्ट्वा पीत्वा च तम स्नात्वा पूजयित्वान पेश्वर, छित्वा मेरु समम पापम गोलोकम याति मानवः। जो मनुष्य अयोध्यावासिनी गोपियों के इस कथा को सुनेगा, वो योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। अयोध्यावासिनी नाम तु कथाम या श्रुणुयान् नरः, सब्रजे धाम परमं गोलोकम योगी दुर्लभम। इन गोपियों ने वहां भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि तुम पिछले जन्म में राम थे, ये हम कैसे विश्वास करें, कि तुम तो बहुत चंचल हो और राम तो बड़े शांत स्वभाव के थे, तो तुम कुछ दिखलाओ हमें, अपने राम का चरित्र दिखलाओ। तो वहाँ काम वन में भगवान ने फिर जो ना समुद्र बनाया, और फिर बंसी बजाई तो बंदरों को बुलाया, फिर बंदरों को आदेश दिया चलो पुल बनाओ, तो पत्थर वो फेंक फेंक करके पुल बनाया वहाँ। तो वहाँ सेतु बंध रामेश्वर है, और वो पुल भी बनाया है, पत्थर तैराए ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं राम हूँ। तो राजा विमल की जो 6000 पत्नियां थी उनसे करोड़ों की संख्या में ये कन्याएं उत्पन्न हुई और भगवान कृष्ण जितनी कन्याएं थी उतने रूप धारण करके उनके साथ विहार करते थे। अब यज्ञ सीता स्वरूप गोपियों का वर्णन सुनो। सब पापों को हर लेने वाला है, पुण्यदायक है, मंगल का धाम है। तो जो यज्ञ सीता गोपियां हैं तो ये ठीक है ब्रज में उत्पन्न हुई और एक दिन सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत पूछती हैं राधा रानी से, राधा रानी से व्रत पूछती हैं। श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा मोहितास्तान पेश्वर व्रतम कृष्ण प्रसादार्थम प्रष्टुम राधाम समायुम। तो फिर राधा रानी ने उनको एकादशी का व्रत बतलाया, एकादशी का व्रत किया उन्होंने और इस प्रकार से फिर भगवान की प्राप्ति की। यज्ञ सीता गोपियां, यज्ञ सीता गोपियां ये सोने की जो सीता बनवाई थी भगवान ने हर अश्वमेध यज्ञ में, तो वे बहुत सी सोने की सीताएं इकट्ठी हो गई उनके महल में। तो एक बार भगवान राम उस महल में गए तो उनकी दृष्टि से ही वो जिंदा हो गई और बोले हम तो आपकी पत्नियां हैं, आपने हमको बिठाया, अब हमसे विवाह करो आप। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब ब्रज में तुम लोग गोपियां बनो। तो एकादशी के व्रत से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। एकादशी व्रत नापि प्रसन्न श्री हरि स्वयं मार्ग शीर्ष से पूर्णिमायाम रासम ताभिष्टकार। इसके बाद पुलिंद कन्या गोपियां, पुलिंद कन्या, भगवान राम जब वन में थे तो पुलिंद समझते जंगली जो है वो कन्याएं थी, जंगली कन्याएं थी। तो इनका भी बड़ा अद्भुत जो है ना चरित्र है। तो श्री कृष्ण का दर्शन किया ये, फिर ये आई वृंदावन में। तो इनका जन्म तो हुआ था दूसरे स्थान में लेकिन किसी प्रकार से फिर वृंदावन में आई। तो श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जागी। ये पुलिंद कन्याएं प्रेम से बेहवल हो भगवान की चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान और चिंतन में डूबी रहती थीं। तदर्शन स्मर रोजहा पुलिंद यहाँ प्रेम बेहवला श्रीमद पाद रजो धृत्वा ध्यायंत्यस्तम अहर्निशम। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्व समर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया। ताश्चापि रासे संप्राप्तम श्री कृष्णम परमेश्वरम परिपूर्णतमम साक्षात गोलोकाधिपतिम प्रभुम। अहो इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणारविंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण चरणाम, श्री कृष्ण चरणाम भोजयम् रजो देव दुर्लभम अहो भाग्यम पुलिंदीनाम तासाम प्राप्तम विशेषतः। पुलिंद कन्याएं भगवान राम के समय में थी, जब राम वनवास में थे तो उनको देख करके उनको चाहने लगी। इसकी भगवान के चरणों में सुदृढ़ भक्ति है, वह ना तो ब्रह्मा जी का पद चाहता है, न महेंद्र का स्थान, न सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल का आधिपत्य, न योग सिद्धि, न मोक्ष ही चाहता है। यह पारमेश्वरमखिलम न महेंद्र धृष्ण्यम नो सार्वभौम मनिषम न रसाधिपत्यम नो योग सिद्धिम अभितो न पुनर्भवम वांछंतलम परम पादे रजः स भक्तः। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त हैं, वे हरिचरण रज में आसक्त भगवान के सुजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष सुख नहीं है। निष्किंचना सुकृत कर्म फलैर विरागाम यत्तत्पदं हरिजना मुनयो महांताम भक्ता जो संति हरिपाद रजा प्रसक्ता अन्य वदंति न सुखम किल नैरपेक्षम। अब और जो है गोपियां हैं, दूसरी प्रकार की गोपियां हैं, ये सब पापों को हर लेने वाला वर्णन है और हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। अन्यासाम चैव गोपीनाम वर्णनम श्रुणु मैथिल सर्व पाप हरम पुण्यम हरि भक्ति विवर्धनम। छह वृषभानुओं के घर में ये पैदा हुई तो ये कुछ रमा वैकुंठ वासिनी स्त्रियां हैं, कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां हैं, कुछ अजित पद वासिनी हैं, कुछ ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी, लोकाचुल वासिनी, लोकाचल वासिनी, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की सहचरियां। इन्होंने माघ मास का व्रत किया गोविंद को प्राप्त करने के लिए।
इसके बाद माघ,
हाँ माघ नहीं, माघ के बाद पोष आता है ना, माघ आएगा, अभी आया नहीं है, अब आएगा। तो माघ का व्रत किया उन्होंने और उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। चिंतियंत्यः सदा श्रीमन् गोविंद चरणाम्बुजम् श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम् तामिर माघे व्रतम् कृतम्। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो बसंत का शुभागमन होता है, बसंत पंचमी, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। अब देखो बड़ी सुंदर कथा है, कभी शायद किसी ने सुनी हो, बहुत सुंदर कथा है। माघस्य शुक्ल पंचम्याम वसंतादो हरि स्वयं तासाम प्रेम परीक्षार्थम कृष्णो वेतन गृहान गतः। और कृष्ण कैसे आए, बाघ का चर्म पहने, जटाजूट का मुकुट, जटाओं का मुकुट बांधे और पूरे शरीर में बभूत रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हुए और बंसी बजाते हुए वहां पर पहुंचे। उन गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित प्रेम विह्वल हुई गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आईं। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम आनंद में डूबी हुई सब गोप कन्याएं परस्पर कहने लगीं। गोपियां बोली, ये कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से मिलती जुलती है अथवा ये किसी धनी राजा का पुत्र होगा जो अपनी स्त्री के कठोर वचन से घर से निकल गया ये बहुत सुंदर है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है, कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है, अहो इसकी माता, इसके पिता और इसकी पत्नी बहन इसके बिना कैसे जिंदा रहेंगे, सब सोच रही हैं। अतीव रम्यः सुकुमार देहो मनोजवस्य मनोहरोप्यं मनोहरोयम् अहो कथम जीवति चास्य माता पिता च भार्या भगिनी विनयनम्। ये विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं उनके पास आ गईं और प्रेम से बेहबल और आश्चर्यचकित हो उन योगी स्वर से पूछने लगी। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा तुम्हारा नाम क्या है, हे मुनि जी तुम रहते कहाँ हो तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ हमें ये सब बातें बताओ। कष्टम योगिन नाम किंते कुत्र मासस्तु ते मुने का वृत्ति स्तव का सिद्धिर वदनो वदताम्बर। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूं, क्या हूं, योगेश्वर हूं और सदा मान सरोवर में निवास करता हूं, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश, मैं अपनी शक्ति से बिना खाए पिए सदा रहता हूं, मैं खाता पीता कुछ नहीं हूं। हे ब्रजांगनाओं जो परम हंसों का आत्म साक्षात्कार है उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, मैं भूत भविष्य और वर्तमान जानता हूं, मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन मारण मोहन स्तंभन वशीकरण भी जानता हूं। तो गोपियों ने पूछा, हे योगी बाबा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात हैं तो बताओ हमारे मन में क्या है यदि जानास योगिन स्वम वार्ताम काल त्रयोद्भवाम किम वर्तते नो मनसि वद तर्हि महामते। सिद्ध योगी ने कहा यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है। अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने कह डालूं। भवती नाम च कर्णान्ते कथनीयम् इदं वचहाम विस्मदाज्ञया मा वक्षे सर्वेषां शृण्वतामिह। गोपियां बोले हे मुने तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं है। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से तत्काल भी यहां आ जाएं, तुम्हारे मंत्र से अगर वो आ जाए यहां पर, अब कौन आ जाए तुम तो जानते हो, कौन आ जाए जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करते हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्र जानने वाले हो। अब ये दिखाओ अपने मंत्र की सिद्धि दिखलाओ। सत्यम योगेश्वरोऽसि तुम त्रिकालज्ञो न संशय वशीकरण मंत्रेण सद्यः पठन मात्रतः। यदि श्रोत्रैव च आयाति चिन्तितो योऽस्ति वै मुने तदा मन्यामहे त्वां वै मन्त्रिणां प्रवरम्बरम्। सिद्ध योगी ने कहा हे ब्रजांगनाओ तुमने तो ऐसी बात कही है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है, तथापि मैं तुम्हारी वस्तु को प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती है। चिंता ना करो, अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्लभो दुर्घटो भावो विस्माभिर्गतितः यहां तथाप्य हम करिष्यामि वाक्यम न वाक्यम न चलते सताम। निमीलियत नेत्राणि मा शोचम क्रोध स्त्रियां भविष्यति न संदेहो युष्माकं कार्यमेव च। तो बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली तो क्या किया, वो तो वहीं थे, उनको बुलाने की थोड़ी जरूरत थी, वो तो स्वयं थे। तो श्रीहरि योगी का रूप छोड़ करके नंदन नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंदन नंदन सानंद मुस्करा रहे हैं, तो वे बड़ी विस्मित हुई। योगी का बड़ा प्रभाव, जाना कि वो योगी का बड़ा प्रभाव है, और योगी चले गए। उन्हें बहुत हर्ष हुआ और कृष्ण का मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तथेति मिलिताक्षेषु गोपेशो भगवान हरे विहाय तद योगी रूपम बभौ श्री नंद नंदन। नेत्रानुन्मील्य ददृशु सानंदम नंद नंदनम विस्मिता सन प्रभावज्ञा हर्षिता मोह मांगता। फिर माघ मास के महाराज में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र विहार करते हैं। माघ मासे महारासे पुण्य वृंदावने वने ताभिसार्धम हरि रे मे सुरी भी सुर राड़ी वे। फिर और भी दूसरी प्रकार की गोपियां हैं, हाँ, जो नौ उपनंदों के घर में जन्मी थीं, तो कई प्रकार की जो है ये गोप कन्याएं थीं, और इन्होंने बहुत पुण्य किए थे जो कि गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई, और राधिका के साथ रहने वाली इनकी सखियां थीं, राधा रानी की सखियां थीं, और राधा रानी के साथ में कृष्ण के साथ में उत्सव खेलती हैं, रंग डालती हैं कृष्ण के ऊपर, तो वही काफी वर्णन है। फिर देवांगना स्वरूप गोपियां हैं, तो इनका भी जो है ना बड़ा सुंदर वर्णन है, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है इनका वर्णन। अथ देवांगना नाम चाम गोपी नाम वर्णनम श्रृणु चतुर्थ पदार्थम नृणाम भक्ति वर्धनम उत्तमम। तो ये जो है किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर मोहित हो गई और दामोदर की प्राप्ति के लिए माघ मास का व्रत किया। अब ये माघ मास का व्रत ये भी कर रही हैं। श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा मोहिता कन्निकाश्चता दामोदरस्य प्राप्त्यर्थम चक्रुर्माघ व्रतम परम। आधे सूर्य के उदित होते होते ये यमुना में जाकर स्नान करती, प्रेमानंद से बेहबल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थीं। अर्थोदयेर के यमुनाम नित्यम स्नात्वा ब्रजांगनाम उच्चर जगो कृष्ण लीलाम प्रेमानंद समाकुलाम। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा तासाम प्रसन्ना श्री कृष्ण वरम ब्रोहित ताऊचुस्तम परम नक्त्वा कृतांजलि पुटाशने। गोपियां बोली निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर और कारणों के भी कारण हैं। आप बंसीधारी हैं, आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। योगीश्वर आणाम कले दुर्लभस्तम सर्वेश्वरः कारण कारणोऽसी तुम नेत्रगामी भवता सदानो बंसीधरो मन्मथे मन्मथांगः। तब तथास्तु कि अगर जिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार खोल दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थिर हो जाएं। नारद जी वरदान दे रहे हैं श्रोताओं को कि आपके ऊपर भी भगवान कृपा करें। तथास्तु चोक्त्वा हरि राजदेवं तासाम तो यो दर्शन मातानं भूया सदा ते हृदय नेत्र मार्गे तथा आहूत एवासु चित्ते। भगवान के परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई अवतार नहीं, क्योंकि वे एक कार्य के लिए आए किंतु करोड़ों कार्य किए। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो नान्य एव ही एक कार्यार्थ मांगत कोटि कार्यम च कार्यम। जिन्होंने कमर में पीतांबर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूं। परिकरी कृत पीत पटम हरिम सिखिकरी नति कृत कंधरम लकुट वेणुकरम चले कुंडलम पटुतरम नटवेश धरम भजे। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही बस में होते हैं, निश्चय ही इनमें गोपियां सदा प्रमाण हैं, जिन्होंने ना तो कभी सांख्य का विचार किया ना योग अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। भक्त है वश्यो हरि आदिदेव सदा प्रमाणम किल चात्र गोप्या सांख्यम च योगम न कृतम कदापि प्रेम नैवयस्य प्रकृति गतास्युः। तो इस तरह से हमने आप लोगों को कुछ चर्चा सुनाई है गोपियों की, और यहाँ पर भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मैं अवतार लूँगा, तो अभी तक के अवतारों में भक्तों ने मेरा सम्मान के साथ संबंध स्थापित किया है, लेकिन उससे मैं उतना बस में नहीं होता हूँ जितना जो घनिष्ठ संबंध हैं, मतलब मुझे पुत्र के रूप में चाहते जो भक्त या मित्र के रूप में चाहते हैं या पति के रूप में चाहते हैं, तो इस प्रकार से मैं ज़्यादा बस में होता हूँ। तो ये जो है ना कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण है। कोई प्रश्न है किसी का, या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न
बताया था।
इनका अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि भक्ति के द्वारा जैसे गोपियों ने प्राप्त किया है और हम लोग साधना के द्वारा कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? हाँ, उन्होंने कई जन्मों तक ये सब साधना की, तपस्या की, आप समझे, कई जन्मों तक तो ये बताया गया है कि बहुत तपस्या की। जो श्रुति रूपा गोपियां हैं उन्होंने भी मतलब बहुत तपस्या की, तब उनको जन्म मिला ब्रज में गोपियों के रूप में, और फिर वो अवतार काल की बात है कि कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, कृष्ण की निकटता प्राप्त हुई, आप समझे ना, और उसके बाद भी फिर तपस्या की। देखो तपस्या की
है ना, माँ का व्रत रखे,
माँ का व्रत किया, कात्यायनी का व्रत किया, जमुना जी की पूजा की, एकादशी का व्रत किया, और बड़ी मतलब सावधानी के साथ शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन किया, और कई जन्मों में पहले भी उन्होंने तपस्या की है ना। लेकिन जो सहजियां हैं वो कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे प्रेम से कृष्ण को प्राप्त करो, है ना। तो ये चीज है, इसलिए हमें समझ प्रभुपाद के तात्पर्य इसलिए बहुत जो है ना हमें सावधान करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सावधान करते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि आसान है, ऐसा नहीं है। है ना, दंडकारण्य जो ऋषि हैं उन्होंने कितनी तपस्या की, तब वो गोपियां बनी, और फिर भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए फिर तपस्या कर रहे हैं, है कि नहीं? और कोई प्रश्न किसी का आपका? हाँ, गोपियों के युवत 100 प्रकार के थे, 100 प्रकार के गोपियों के युवत हैं, और इस ग्रंथ में लिखा है कि 100 करोड़ एक युवत का मतलब 100 करोड़ होता है आप समझे, और 100 प्रकार के युवत थे गोपियों के। तो आपका प्रश्न क्या है, इन गोपियों में अंतर क्या है? ये विभिन्न अवतारों में जो है विभिन्न स्थानों में भगवान के प्रति आसक्त हुई, कुछ सुतल लोक वासनी स्त्रियां हैं, वामन अवतार में भगवान जो है ना जब सुतल लोक में बलि को भेजते हैं और स्वयं बलि के द्वारपाल बनते हैं, तो वहां की स्त्रियां हैं तो वो भी चाहती हैं भगवान को, तो वो जो है वो भी गोपियां बनी, उनका अलग युद्ध है। भगवान राम के समय में कई प्रकार की स्त्रियां अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर मिली जो कि भगवान पर आसक्त थी, तो वो कृष्ण का जो अवतार है इसमें सब करोड़ों कार्य एक साथ होते हैं। यहां नारद जी बता रहे हैं राजा भोला सो को कि परिपूर्णतम जो है ना मतलब भगवान कृष्ण ही है कि वो एक कार्य में करोड़ों कार्य करते हैं, ठीक है ना। नित्य सिद्ध गोपियां वो अलग हैं जो गोलोक धाम से आई हैं, वो अलग हैं, राधा रानी की सखियां हैं वो अलग हैं, नित्य सिद्ध गोपियां अलग हैं। दंडकारण्य के ऋषि हैं और श्रुति रूपा गोपियां हैं, क्या और कौन कौन गोपियां थीं? और औषधि रूपा गोपियां भी थीं, धन्वंतरी भगवान ने जो है ना औषधियों को आदेश दिया कि तुम इस रोग को दूर करो, तुम इस रोग को दूर करो, उनको आदेश दिया, तो वही भगवान से प्रेम करने लगी, तो वो भी जो है ना पति रूप में चाहती भगवान को, तो वो भी जो है ना वो भी स्त्रियां बनी भगवान के अवतार में। मत्स्य अवतार जब भगवान का हुआ तो समुद्र कन्याओं में जो है ना समुद्र कन्याएं भी आ सकती थी भगवान में, तो वो समुद्र कन्या गोपियां हैं, तो इस तरह से बहुत गोपियां हैं। इस ग्रंथ में ये भी वर्णन है कुछ गोपियां गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वार पालिकाएं हैं, और कुछ श्रृंगार साधन की व्यवस्था करने वाली हैं, और कुछ सैया संवारने में लगी रहती हैं, अलग अलग गोपियां हैं, कोई पार्षद गोपियां हैं, और कुछ वृंदावन की देखभाल करने वाली हैं, कुछ गोवर्धन गिरी पर निवास करने वाली हैं, और कुछ गोपियां कुंज वन को सजाती संवारती हैं, और बहुत सी गोपियां ऐसी हैं जो कृष्ण के निकुंज में रहती हैं। इसके अलावा यमुना जी के साथ में जो स्त्रियां हैं उनका अलग युवत है, गंगा जी के साथ जो स्त्रियां हैं उनका अलग युवत है, फिर रमा देवी यानी लक्ष्मी जी भी कभी एक अलग युवत है, मधुमाधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा और माया, इनके भी अलग अलग युवत हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की
जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय। इस ग्रह सीता मित्र प्रभु की जय।